दिन भर 28 सितंबर शनिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण को भारत ने झूठा, भड़काऊ और नफरत भरा बताया।
Attempts to sharpen differences and stir up hatred are simply put hate speech.
बिहार में बीजेपी को हराने के लिए बना विपक्ष का महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंचा।
जितना गठबंधन बचाने का मेरा जवाबदेही है उतना ही तेजस्वी जी को भी है, उतना ही माझी जी को है, उतना ही उपेंद्र जी को, उतना ही कांग्रेस को भी। ठीक है,
बीबीसी इंडिया बोल में होगी चर्चा, क्या नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाई है, सब विस्तार से। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव विदिशा मैत्री ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और भारत का पक्ष रखा। उन्होंने इमरान खान के भाषण को भड़काऊ बताया और कहा कि उनकी हर बात झूठी थी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से 5 सवाल भी किए, जिनमें भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से जवाब मांगा। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए समय भी बढ़ा दिया था, क्योंकि कई जगहों पर देरी से मतदान शुरू होने की खबरें मिली थी। तालिबान से मिली धमकियों के बावजूद अफगान के लोग वोट करने पहुंचे। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कुल मतदान कम रहा। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला मौजूदा अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला के बीच है। मतदान के दौरान अफगानिस्तान में कई जगहों पर बम धमाके की खबरें भी आईं। मुख्य चुनाव अधिकारी हवा आलम नूरिस्तानी ने एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए चुनाव के दौरान हुई कुछ तकनीकी समस्याओं को स्वीकार भी किया। हमने तकनीकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। यह एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं जरूर हुई, लेकिन पूरी मतदान प्रक्रिया अच्छी रही। हमने ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो जाए। हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। ये थे अफगानिस्तान के मुख्य चुनाव अधिकारी हवा आलम नूरिस्तानी के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की जांच तेज हो गई है। अमरीकी संसद के निचले सदन ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को यूक्रेन से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। डेमोक्रेट पार्टी के बहुमत वाले सदन ने 5 विभागों को समन भी भेजा है। 2 नए पोल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पर लोगों का समर्थन भी बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर 2016 के चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करने का दबाव डाला था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे इनकार किया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रमुख मिचेल बाबचालेट ने गिनी से 10 साल पहले एक स्टेडियम में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा संदेह था कि राजधानी कोनाक्री में हुई 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार थे। उस दौरान 100 से ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन हिंसा भी हुई। मिचेल बाबचालेट ने कहा कि इसमें शामिल कुछ लोगों के खिलाफ सबूत भी हैं, लेकिन किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रूसी अधिकारियों से कहा था कि उन्हें पिछले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अमरीका ने दूसरे देशों में भी ऐसा ही किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये बातें साल 2017 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान कही गई थी। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री और राजदूत शामिल थे। ब्रिटेन के बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होने की आशंका को टालने के लिए विपक्षी दल आगे की योजना पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उनके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है। ब्रिटेन की स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अल्पमत की सरकार को हटाने के लिए अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ब्रितानी संसद में 3री सबसे बड़ी पार्टी है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने मेलानोमा नाम की बीमारी के इलाज के लिए 2 दवाइयों के मिश्रण का उपयोग किया है। मेलानोमा एक प्रकार का त्वचा कैंसर है और दवाइयों के मिश्रण का उपयोग मरीज को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए किया गया है। इस कैंसर में मरीज के सिर्फ 9 महीने जिंदा रहने की संभावना होती है। सऊदी अधिकारियों ने नए टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करने वालों को चेतावनी दी है कि कुछ सार्वजनिक व्यवहार जुर्माने का कारण बन सकते हैं। इसके तहत जिन अपराधों की बात की गई है उनमें अभद्र कपड़े, कूड़ा फैलाना, थूकना, कतार को पार करना, बिना अनुमति के तस्वीरें लेना और प्रार्थना के समय संगीत बजाना शामिल है। पुरुष रग्बी विश्व कप में जापान की आयरलैंड पर हुई जीत के बाद जापान में रग्बी प्रशंसकों का जश्न अब भी जारी है। ये जीत इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि जापान ने आयरलैंड जैसी मजबूत टीम को हराया है। आयरलैंड पिछले हफ्ते रैंकिंग में पहले स्थान पर थी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी एक घंटे का प्रसारण। संदीप सोनी के साथ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कहा कि इमरान खान का भाषण भड़काऊ था और उनकी कही हर बात झूठ थी। इससे पहले इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से की गई शांति की सभी कोशिशों को नकार दिया है। इमरान खान ने अपने भाषण में दुनिया को आगाह करते हुए कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान के आरोपों का भारत ने जवाब दिया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को देर रात यूएन में भारतीय दूतावास की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब दिया।
Attempts to sharpen differences and stir up hatred are, simply put, hate speech.
भारतीय दूतावास की अधिकारी विदिशा मैत्रा ने कहा, कूटनीति में शब्दों की अहमियत होती है। 21वीं सदी में नरसंहार, रक्तपात, नस्लीय श्रेष्ठता, बंदूक उठाएं और अंत तक लड़ेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल मध्यकालीन मानसिकता को दर्शाता है। गुरुवार को इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने लगभग 50 मिनट के भाषण में कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ से की गई शांति की सभी कोशिशों को नकार दिया। कश्मीर के मुद्दे पर इमरान खान ने अपने भाषण में दुनिया को आगाह करते हुए कहा था, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो कुछ भी हो सकता है। इमरान खान ने अपने देश में चरमपंथी गुटों के खात्मे की बात भी की थी और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खुद जांच करवा ले। इस पर विदिशा मैत्रा ने अपने जवाब में कहा,
Now that Prime Minister Imran Khan has invited UN observers to Pakistan,
विदिशा मैत्रा कह रही थी कि चूंकि अब इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान में कोई चरमपंथी संगठन सक्रिय नहीं है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को इसकी पुष्टि के लिए आमंत्रित किया है तो हम चाहेंगे कि दुनिया उनसे इस वादे को पूरा करने को कहे। आतंकवाद के मुद्दे पर ही विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान से कुछ सवाल पूछे।
Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN designated terrorists?
क्या पाकिस्तान इसकी पुष्टि कर सकता है कि उसके यहाँ संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल 130 आतंकवादी और 25 आतंकी संगठन मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान ये मानेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी सरकार ऐसी है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले व्यक्तियों को पेंशन देती है? क्या पाकिस्तान ये समझा सकता है कि यहाँ न्यूयॉर्क में उसे अपने प्रतिष्ठित हबीब बैंक को क्यों बंद करना पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों के लिए लाखों डॉलर का लेन देन कर रहा था? इस तरह के कई सवाल विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान के सामने रखे। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में कहा था कि भारत को कश्मीर से अमानवीय कर्फ्यू हटाना चाहिए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाते हुए ये भी कहा था कि भारत में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्ववादी सोच वाले लोगों की हुकूमत है जो मुसलमानों की नस्ल कुशी करने में यकीन रखते हैं।
मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ लाइफ मेंबर ऑफ आरएसएस। आरएसएस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज इंस्पायर्ड बाय एडॉल्फ हिटलर एंड मुसोलिनी। दिस आरएसएस बिलीव्ड इन द एथनिक क्लेंसिंग ऑफ मुस्लिम्स।
भारतीय अधिकारी विदिशा मैत्रा ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का नया चैंपियन बनना चाहता है, जबकि ये वही देश है जहाँ अल्पसंख्यक आबादी 23% से घटाकर आज 3% पर ला दी गई है। विदिशा मैत्रा ने कहा कि ये वही देश है जिसने ईसाई, सिख, अहमदिया, हिंदू, शिया, पश्तून, सिंधी और बलोच समुदाय के लोगों को ईश निंदा कानून के जरिए लगातार उत्पीड़न किया है और जबरन धर्मांतरण करवाया है। विदिशा मैत्रा ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और नफरत भरी बातों को बढ़ावा दिया है, जबकि भारत जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान को जवाब देते हुए उनका कहना था कि भारत के नागरिकों की तरफ से किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, कम से कम उन्हें तो नहीं जिन्होंने नफरत की विचारधारा से आतंकवाद का उद्योग बनाया है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तकरीरों पर भारत प्रशासित कश्मीर में क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे सहयोगी शकील अख्तर ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी, जैसे पहले ही हमें मालूम था कि लोगों में काफी ज्यादा जो है आशाएं अपेक्षाएं हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ इस अधिवेशन की जो है अपेक्षा की जा रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 7:30 बजे बोले, लेकिन 7 बजे से ही लोग टीवी सेट्स के पास थे। हमने भी देखा कि लाल चौक पर भी कई जगहों पर बड़ी संख्या में लोग एक जगह जमा होकर टीवी स्क्रीन के पास थे। और श्रीनगर के कई इलाकों में जहां हम कल गए, उनका ये कहना था कि वो कई फैमिलीज एक ही जगह बैठकर इन स्पीचेस को सुनेंगे, क्योंकि इसमें कारण ये है कि बहुत ज्यादा हाइप दिया गया था इस चीज को। कहा गया था कि 27 को बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, हो सकता है जो जनरल सेक्रेटरी जो है संयुक्त राष्ट्र के वो कोई घोषणा करेंगे। हालांकि जो विश्लेषक है उन्होंने कहा था ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा होने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो संबोधन दिए, हालांकि बहुत ही कम समय के लिए बोले, 17-18 मिनट के लिए बोले नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भारत की जो है उपलब्धियों के बारे में जिक्र तो किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान या कश्मीर का कोई भी जिक्र नहीं किया। आतंकवाद के बारे में उन्होंने बहुत ही ठोस अंदाज में भारत का पक्ष सामने रखा पूरी दुनिया के, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र न करने के बाद जो है लोगों में एक ऐसा फीलिंग आया, नरेंद्र मोदी और इमरान खान के संबोधन के बीच जो गैप था उसमें ऐसा फील हो रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी तरह का कोई समझौता जो है वो खुफिया तरीके से पा गया है और शांति बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन जब इमरान खान बोले तो उन्होंने बहुत सख्ती के साथ अपना जो है अपना व्यू पॉइंट सामने रखा और कश्मीर पर ही पूरी स्पीच का फोकस उन्होंने रखा और 3 बातें सामने रखी इंडिया के। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू हटाया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए और कश्मीर में जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो कश्मीरियों को दिया जाए। तो इस तरह से लोगों में एक तरह का ये जो है सेंस ऑफ जो है माइल्ड विक्ट्री लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि भारत ने इसको मुनासिब ही नहीं समझा कि वो कश्मीर के की स्थिति के बारे में इस मंच पर कुछ बोले, लेकिन इमरान खान ने जो है पूरी दुनिया को ये बता दिया और उन्होंने एक तरह से वार्न भी किया और कहा कि ये थ्रेट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में स्थिति ऐसी ही रही तो कश्मीर में हालात बिगड़ सकते हैं और पुलवामा का खास तौर से उन्होंने जिक्र किया, कहा कि पुलवामा दोबारा हो सकता है और आरोप जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। उन्होंने इस बात का खंडन भी किया कि 500 चरमपंथी जो हैं वो जो भेजने की बातें कर रहा है हिंदुस्तान, पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि इसमें किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इस सारे जो है सिलसिले का जो विश्लेषण जब करते हैं यहाँ के विश्लेषक, तो वो कहते हैं कि कश्मीरियों को एक तरफ तो इस बात में जो है निराशा हुई है कि जिस तरह से हाइप क्रिएट किया गया था कि वहां से कोई बड़ी घोषणा होगी वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि पाकिस्तान की तरफ से जो डिमांड सामने रखी गई वो हमेशा जब भी यहाँ स्थिति में बिगाड़ पैदा होता है तो वही डिमांड सामने आती है। यानी जब लोगों को बड़ी संख्या में पकड़ा जाता है तो उनकी रिहाई पहला पॉइंट होता है, दूसरा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको हटाने का भी मुतालबा होता है और उनने सेल्फ डिटरमिनेशन की बात भी की।
ये बताइए कि कल जो है वो जो वहाँ पर पाबंदियाँ हैं और जो रुकावटें हैं कश्मीर में, उस पर कुछ काफ़ी सख्ती बढ़ा दी गई थी, जो सिक्योरिटी थी वो चुस्त कर दी गई थी, तो अब क्या स्थिति है?
देखिए, प्रशासन और पुलिस को ये आशंका थी कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए संयुक्त राष्ट्र में जिसे लोग जो है अपनी विजय समझे और उसके बाद पटाखे छोड़े, आतिशबाजी करें या बाहर निकलकर जुलूस वगैरह निकाले, इसलिए ये प्रतिबंध अभी जारी हैं। हालांकि कल दिन भर कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी, ऐसा आज नहीं है, लोग आ जा रहे हैं, दुकानें तो बंद ही हैं, कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं हो रही है, स्कूल भी बंद है, लेकिन जिस तरह से एक पैटर्न चलता आया है पिछले दिनों से वही आज दोबारा हुआ है। लेकिन बैरिकेड्स और नाकाबंदी एहतियात के तौर पे वहां रखी गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग इसे फर्ज कर लेंगे कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच जैसे कोई ऐसा बड़ा मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीरियों को जो है एक जीत प्रदान की है। इस तरह ये आशंका जो है, इसी आशंका के चलते ये प्रतिबंध अभी रखे गए हैं। कुछ इलाकों में बैरिकेड्स या तार बिछाकर वहां पूछताछ के बाद ही जाने दिया जाता है, लेकिन कल वाली स्थिति अब बदल गई है, अब वैसी स्थिति है जैसी यहाँ रोजाना इन महीनों में रही है।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए महीने भर से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले इस राज्य में भारतीय दंड विधान के बजाय रणवीर दंड विधान लागू होता था, लेकिन अब जो कानून पूरे देश में लागू है वही जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जम्मू के स्थानीय लोग, युवा, नेता और व्यवसायी क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू में लागू किए गए प्रतिबंधों में सहूलियत दी जा रही है और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है, पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी हैं। महीने भर से ज्यादा वक्त गुजर चुका है जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, मगर आज भी लोग असमंजस में हैं। उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा और इसलिए लोगों के बीच मिली जुली प्रतिक्रिया ही मिल पाई। जम्मू की सबसे बड़ी फलों की मंडी में व्यापार सामान्य ढंग से चल रहा है, लेकिन कश्मीर की घाटी में मौजूदा हालात की वजह से यहाँ के व्यापारियों का काफी पैसा फंसा हुआ है। इसी मंडी के अध्यक्ष श्यामला लंगर कहते हैं,
प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने जहाँ से हमसे एडवांस लिया हुआ था वो लोग एप्पल कम ला रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम आ रही है मैक्सिमम हमें, जो कि वहाँ से जो पैसे की रिकवरी है वो नहीं हो रही है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग जम्मू नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई तो कोई नया नया हर रोज बहाना लग जाता है।
वैसे तो जम्मू में बाहर से व्यवसायियों का आना जाना लगा रहा जिन्होंने यहाँ निवेश भी किए, मगर अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यहाँ का व्यवसायी वर्ग थोड़ा असमंजस में जरूर नजर आया। विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और व्यवसायी भी। उनका कहना है कि जम्मू के व्यवसायियों के पास उतनी पूंजी नहीं है जिससे वो बाहर की कंपनियों का मुकाबला कर पाए।
जम्मू में कोई बहुत भारी बिजनेस हाउसेज नहीं है, पर ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि कहीं ना कहीं ये अंदर डर है इस बात का कि जब ये बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तो क्या हम उनके मामले में कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हैवी इंडस्ट्री जो कुछ लोग यूनिट होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी आउटसाइडर्स हैं, पर ऐसा जम्मू के अंदर बहुत बड़ा वो चंक नहीं है जिसको हम कह सकें कि हैवी इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ये लोग बाहर से आएंगे, ये श्योर है, फॉर ग्रंटीड है। पहले ब्रेक थी 370 के कारण, अब वो ब्रेक हट गई है, अब वो खुल के आएंगे कि धारा 371 हिमाचल नागालैंड जैसी स्टेट्स में है, उसको जिसको डोमिसाइल कहते हैं, वो इमीडिएटली जैसे आपने 370 हटाया तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए चाहे 15-20 साल के लिए 371 यहाँ लग जाती तो कहीं ना कहीं लोकल लैंड एक्ट के हिसाब से वो प्रोटेक्शन 15 साल की लोगों को मिल सकती।
जम्मू के स्थानीय डोगरा सरकार के फैसले से फिलहाल तो खुश हैं, मगर वो चाहते हैं कि अनुच्छेद 371 जैसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। युवा डोगरा नेता तरुण उप्पल कहते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे प्रबंध करने चाहिए जिससे स्थानीय लोगों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट विल पुट डोमिसाइल एक्ट आर्टिकल 371, अगर वो आता है तो उससे काफ़ी सारी नौकरियां जो है सेफगार्ड हो जाएंगी। ऐसे और भी राज्य हैं जैसे हिमाचल की बात करें तो वहां पे आर्टिकल 371 लगता है।
जम्मू के रहने वाले कुछ लोगों को लगता है कि ये इलाका देश के विभिन्न प्रांतों से आए लोगों की शरण स्थली पहले से ही बना हुआ है। उनका मानना है कि अब बाहर से आकर बसने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। इन्हीं में से एक हैं सुनील पंडिता।
आफ्टरऑल इसमें जम्मू ही घिसा जाएगा क्योंकि जम्मू में इतना लोड है ऑलरेडी, जम्मू के पास वैसे कोई जगह नहीं। कल जिस समय इसको बाहर के लोग आएंगे, बिहार का है, यूपी का है, जैसे हरियाणा के है, जैसे वो कल के डेट में हमारे देश में घुसेंगे, हमारे स्टेट में घुसेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्राइम बढ़ेगा, दूसरी बात यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ेगी, तीसरी बात यहाँ पर आप जो कह रहे हैं फैक्ट्रियों की बात, लेकिन जिस समय कल के डेट में बाहर के लोग आएंगे इनकी हिम्मत नहीं कि उस चीज़ को ये झेल पाएंगे। इवन खासकर जो एम्प्लॉयमेंट है, खासकर जो उनके जो लेबर है, वो मुझे नहीं लगता जम्मू से कहीं कोई मिल जाएगा, वो सारे जो बाहर से आएंगे, जम्मू जो है इस चीज़ से लॉस में जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा।
लेकिन कानून के जानकार कहते हैं कि भारत का संविधान राज्य में लागू नहीं होने की वजह से जिन वर्गों को नुकसान हुआ उनकी भरपाई होगी और अब उन्हें अपने अधिकार मिलेंगे। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर शर्मा कहते हैं,
अब जम्मू कश्मीर भी सेक्युलर स्टेट एपरेटस की तरह खड़ा होगा, एक चीज़ ये। दूसरा, महिलाएं जो 50% जनसंख्या का हिस्सा हैं, उसे बराबरी का हक मिल गया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जम्मू कश्मीर में अभी तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही भारत का संविधान यहाँ पे लागू हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। भाजपा ट्वीट करे या ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन डंडा लेके पीछे पड़ेगा कि आपको यहाँ यहाँ एरियाज में पॉलिटिकल रिजर्वेशन या अन्य तरीके की रिजर्वेशन देनी है।
अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था। इस राज्य में भारतीय दंड विधान की जगह रणबीर दंड विधान लागू रहा, मगर अब भी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर क्या केंद्र शासित राज्य ही बना रहेगा या फिर से इसे अलग राज्य का दर्जा हासिल हो पाएगा। सलमान रावी, BBC जम्मू।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
बिहार में BJP को हराने के लिए बना विपक्ष का महागठबंधन टूट सा गया लगता है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगले महीने 5 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में तमाम सहयोगी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है। क्यों टूटने की कगार पर पहुंचा महागठबंधन, सुनिए पटना से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट में।
बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन चुनावी राजनीति अभी से ही शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने उन 5 सीटों पर उपचुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है जो लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हुए हैं। नाथनगर, बेलहरा, सिमरी बख्तियारपुर, किशनगंज और दरौंदा विधानसभा सीट पर 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। राजनीतिक जानकार इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कह रहे हैं, कारण कि इसका परिणाम अगले साल होने वाले चुनाव की कैंपेनिंग की दशा और दिशा तय करेगा। लेकिन बिहार का विपक्षी महागठबंधन अभी से ही बिखर गया है। राजद ने 5 में से 4 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया तो नाराजगी में कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर अकेले लड़ने की बात कह दी। जब सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने लगे तो महागठबंधन किस बात का, और क्या वाकई राजद के खिलाफ कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर लड़ने का फैसला कर लिया है? इन सवालों के जवाब में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कहते हैं,
नहीं, कांग्रेस का एक सिस्टम है। हम लोग का प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उस पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, गठबंधन पर भी और उम्मीदवार पर भी। सबों की राय लेकर के हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल साहब चले गए हैं दिल्ली। हम समझते हैं जो आज अगर उनकी बातचीत होगी आला कमान से तो आज नहीं तो निश्चित रूप से कल उनकी बातचीत होगी, तब हम लोग का कैंडिडेट भी डिसाइड होगा और सीट भी डिसाइड होगी।
मुकेश सहनी महागठबंधन के इस विवाद का कारण RJD नेतृत्व को मानते हैं। सहयोगी दलों को बिना भरोसे में लिए अपना कैंडिडेट उतारने के राजद के फैसले को तानाशाही का नाम देते हुए सहनी कहते हैं,
ठीक है, लेकिन किसी का तानाशाह तो नहीं चलेगा ना। जितना गठबंधन बचाने का मेरा जवाब दही है उतना ही तेजस्वी जी को भी है, उतना ही माझी जी को है, उतना ही उपेंद्र जी को, उतना ही कांग्रेस को भी, ठीक है, और सब मिलके डिसीजन लेना चाहिए। कोई वन साइड डिसीजन लेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आज थोड़ा सा एक चाबी बोलते हैं ना, टाइट करने जैसा बात हुआ है कि चाबी टाइट हो ताकि भविष्य में लोग गलती ना करें।
BBC ने राजद के ऊपर लग रहे आरोपों और गठबंधन के अस्तित्व को लेकर वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी से बात की। वे पिछले चुनाव के रिकॉर्ड के आधार पर लिए गए अपने फैसले को जायज ठहराते हुए कहते हैं,
हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान इसके लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ के लोग कह रहे हैं, लेकिन अब आपकी दिल्ली में बात हुई है कि नहीं हम नहीं जानते। आला कमान थोड़े करेगा, करना होगा तो लड़ेंगे, तो अब क्या किया जा सकता है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करते रहे हैं, हम लोग तो राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, हम लोग तो एक राज्य के पार्टी हैं, और यहाँ कांग्रेस का है कि अगर लड़ाई होगी तो कांग्रेस के खिलाफ खुल करके बैटल होगा। यह मंडल कमीशन का किस ढंग से राजीव गांधी ने पानी पीपी के 1.5 घंटा भाषण देके विरोध किया, ये सब जो है बात सामने आएगी।
फिलहाल जो राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक इस उपचुनाव में विपक्षी साथ मिलकर लड़ने की बजाय अलग अलग होकर लड़ने का प्लान बना चुके हैं, लेकिन गठबंधन टूटने की बात को कोई स्वीकार नहीं रहा। मुकेश सहनी तो इसे दोस्ताना संघर्ष का नाम देते हैं। बिहार की राजनीति में अब यही देखना बाकी रह गया है कि एक साथ रहने वाली पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ दोस्ताना संघर्ष कैसे करती हैं। नीरज प्रियदर्शी, बीबीसी पटना।
और आइए एक नज़र सोशल मीडिया की हलचल पर। मेरे सहयोगी प्रशांत चहल ने सोशल मीडिया पर दिन भर नज़र बना के रखी। प्रशांत चहल से मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की और पहला सवाल यही पूछा कि सोशल मीडिया पर आज क्या ट्रेंड कर रहा है।
बहुत सारे विषयों पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है सुबह से, कई तरह के ट्रेंड बने हुए हैं, पर सबसे ऊपर जो इस वक्त है वो है इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम।
रोहित शर्मा का जिक्र कैसे आ गया?
रोहित शर्मा का जिक्र इसलिए आ गया कि आज जो है एक परंपरागत प्रैक्टिस मैच होना था बोर्ड 11 टीम का, जिसको कहते हैं
साउथ अफ्रीका वाला,
साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसमें वो आए ओपनिंग करते हुए, पहली बार मैदान में उतरे और दो गेंदे खेलकर बिना खाता खोले आउट हो गए। इसको लेकर लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया है।
जबकि ये प्रैक्टिस मैच था।
जी, प्रैक्टिस मैच था। लोग लिख रहे हैं कि ये अगर बोर्ड की सबसे बढ़िया टीम का बल्लेबाज है, उनका ओपनर है और उसकी ये हालत है, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है। लोगों ने चीफ सेलेक्टर एम के प्रसाद के उस बयान को भी अपने चर्चा का विषय बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केएल राहुल जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे थे तो एज ए ओपनर वो कोई अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए थे, उनका कोई इंप्रेशन नहीं था। तो हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा को ये ओपनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, एक बार उनको ट्राई किया जाए, आजमाया जाए। लेकिन आज का जो प्रदर्शन रहा, यानी कि दो गेंदे खेलकर एक भी रन वो नहीं बना पाए, उससे लोग बड़े निराश हुए और उनको ट्रोल किया।
केएल राहुल और क्रिकेट के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का जो भाषण हुआ है, उसके बारे में भी क्या सोशल मीडिया पर कुछ चर्चा हो रही है?
सोशल मीडिया पर उसकी भी बड़ी चर्चा है। सुबह से ही हैशटैग UNGA सुबह से ही चल रहा था, उसके इर्द गिर्द लोग लिख रहे थे अपना अपना क्या उनको लगता है, किस तरह के बयानों के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि अचानक से विदिशा मैत्रा का नाम ऊपर आने लगा। विदिशा मैत्रा भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव हैं। उन्होंने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की ओर से पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, उसने एक बार को लोगों को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की याद दिला दी। सबसे ज़्यादा जो उनके भाषण का हिस्सा शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, वो है जिसमें उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि इमरान कभी क्रिकेटर थे और जेंटलमैन्स गेम में यकीन करते थे, पर यूएन में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया और उनका जो भाषण था वो असभ्यता की चरम सीमा तक पहुँच गया।
अच्छा प्रशांत, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जाहिर तौर पर RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया भी होगी, सोशल मीडिया पर चर्चा इस बारे में भी है।
देर शाम RSS के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल का भी एक बयान आया, जिसके इर्द गिर्द हम देख रहे हैं ट्विटर पे एक बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत और RSS को एक दूसरे का पूरक समझा जाना चाहिए। उन्होंने इमरान खान के UN असेंबली में दिए गए बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने भारत से नाराज़गी दिखाई, RSS से नाराज़गी दिखाई, हम वही चाहते थे और हम चाहते थे कि दोनों को साथ रख के देखा जाए, हम एक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस बयान पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं मानते, वो नहीं मानते कि RSS और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत और RSS दोनों ही विविधता को पसंद करते हैं, इसलिए उनको क्यों ना एक दूसरे का पूरक कहा जाए।
सोशल मीडिया की हलचल बता रहे थे प्रशांत चहल। और अब खेल समाचार गागर में सागर भरने के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, सबसे पहले बात बैडमिंटन की, जहां कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पी कश्यप की हार के साथ ही भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पी कश्यप को शीर्ष वरीयता हासिल जापान के केंतो मोमोता से 21-13, 21-15 से हार का सामना करना पड़ा। और उधर दक्षिण अफ्रीका के साथ जो 3 दिवसीय अभ्यास मैच था बोर्ड अध्यक्ष एकादश का, उसमें दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 289 रन पर समाप्त घोषित की, जिसके बाद भारत ने 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। सबसे बड़ी बात की रोहित शर्मा पर नजर थी, लेकिन वो फिलेंडर की गेंद पर क्लासेन के हाथों कैच हुए, केवल 2 गेंदों का सामना कर सके, लेकिन मयंक अग्रवाल ने हाथ खोलते 39 रन बनाए और एस भरत ने 71 रन बनाए। उधर भारत के MP जबीर दोहा में जारी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर हर्डल्स में वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने ब्रिटेन को कल एक महत्वपूर्ण मुकाबले में 2-1 से मात दी। दूसरा मुकाबला जो 5 मैचों की सीरीज है कल खेला जाएगा।
आदेश कुमार गुप्त के साथ, इसी के साथ भारत में बजने वाले हैं कुछ ही देर में रात के 8 कार्यक्रम में आगे, क्या नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाई? बीबीसी इंडिया बोल में होगी चर्चा कुछ ही देर के बाद, लेकिन पहले सुनते हैं अभी तक के मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को दिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और भारत का पक्ष रखा। उन्होंने इमरान खान के भाषण को भड़काऊ बताया और कहा कि उनकी हर बात झूठी थी। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए समय भी बढ़ा दिया था क्योंकि कई जगहों पर देरी से मतदान शुरू होने की खबर मिली थी। तालिबान से मिली धमकियों के बावजूद अफगान के लोग वोट करने पहुंचे। हालांकि पिछले कुछ चुनाव के मुकाबले इस बार कुल मतदान कम रहा। इन चुनाव में मुख्य मुकाबला मौजूदा अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की जांच तेज हो गई है। अमरीकी संसद के निचले सदन ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को यूक्रेन से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। डेमोक्रेट पार्टी के बहुमत वाले सदन ने 5 विभागों को समन भी भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर 2016 के चुनाव में अपने संभावित प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जाँच शुरू करने का दबाव डाला था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार प्रमुख मिचेल बाबचालेटसन ने गिनी से 10 साल पहले एक स्टेडियम में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा संदेह था कि राजधानी कोनाक्री में हुई 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार थे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रूसी अधिकारियों से कहा था कि उन्हें पिछले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि अमरीका ने दूसरे देशों में भी ऐसा ही किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये बातें साल 2017 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान कही गई थी। ब्रिटेन के बिना किसी समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होने की आशंका को टालने के लिए विपक्षी दल आगे की योजना पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन की स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अल्पमत की सरकार को हटाने के लिए अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने मेलानोमा नाम की बीमारी के इलाज के लिए 2 दवाइयों के मिश्रण का उपयोग किया है। मेलानोमा एक प्रकार का त्वचा कैंसर है और दवाइयों के मिश्रण का उपयोग मरीज को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए किया गया है। इस कैंसर में मरीज के सिर्फ 9 महीने जिंदा रहने की संभावना होती है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है संदीप सोनी। आज चर्चा का विषय वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन जो श्रोता थोड़े विलंब से हमसे जुड़े हम उन्हें दोबारा बताना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के मुद्दे को हमेशा उठाती रही है, पर क्या नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को वाकई न्याय दिला पाई है? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा कर रहे हैं हम इसी विषय पर। श्रोता, इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए नोट करें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811 7000 और 1802 7001 पर। वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता टेलीफोन के जरिए इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है।
तारीख 3 फरवरी जगह जम्मू। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए इस तरह से अपनी चिंता जताई। मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के तमाम नेता कश्मीरी पंडितों की बेहतरी की बात करते रहे हैं। 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म हुआ तो कश्मीरी पंडितों ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। और अभी कुछ दिन पहले बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने जम्मू के पास पुरखू कैंप में रहने वाले कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की तो वहां से कुछ इस तरह की आवाजें सुनने को मिली।
यही परेशानी है क्योंकि हमारे इधर नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, इतनी गंदी है, रोज हर कभी किसी के बच्चे सांप बिच्छू, बस यही है, ना इधर बाथरूम है, ना इधर लाइट है, कुछ भी नहीं है इधर।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अकोमोडेशन चाहिए रहने के लिए और बाकी बच्चों के लिए सुविधा। यहाँ सारे ओवर एज हो गए, ना उनके बारे में सोचा जा रहा है, सिर्फ हमें थोड़ा रिलीफ दिया जा रहा है मुँह बंद करने के लिए, इसका मतलब थोड़ी होता काम करें।
ये तरह तरह की आवाज़ें अपने आप में मिलकर एक सवाल पैदा करती हैं और वो सवाल ये कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाई है। इस विषय पर श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करने से पहले राहुल पंडिता, वरिष्ठ पत्रकार, आप बताएं हमारे श्रोताओं को कश्मीरी पंडितों के साथ क्या अन्याय हुआ और उन्हें किस न्याय का इंतज़ार है।
देखिए, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा 30 साल पुरानी है। 1990 में करीब 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडित जो है, जो माइनॉरिटी थे कश्मीर घाटी में, उनको इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के चलते घाटी छोड़कर जाना पड़ा। करीब 700 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसके बाद वो घर छोड़ने पर मजबूर हुए और जम्मू और भारत के अन्य स्थानों पर शरण उन्होंने ली। पहले के कुछ सालों में हजारों लोग जो है रेफ्यूजी कैंप्स में, जैसे पुरखू कैंप हमने लिखा है, उसी तरह के कैंप्स में हजारों लोग की मौत हुई सनस्ट्रोक से, स्नेक बाइट से, अनसैनिटरी कंडीशन से। अब 30 साल हो गए इस बात को और भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियों ने इस बात को अपनी भारतीय जनता पार्टी ने खासकर अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इस बात को रखा है, लेकिन अभी तक आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी इस तरह के कोई संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को कोई न्याय मिलेगा।
राहुल पंडिता, वरिष्ठ पत्रकार, कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, कुछ सवालों पर और गहराई से बात करें, उससे पहले कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज पहले श्रोता। कौन है हमारे साथ?
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
सुनील जी नमस्ते, मैं पुरसत से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से।
जी अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
बताइए इस विषय पे क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी सरकार ने
है?
जी जी,
ये अपने ही देश में विस्थापित जी है सर, ये अपने ही देश में विस्थापित है, ये सब मोदी जी ने और कश्मीरियों ने और भारतीयों ने सबने सोचना चाहिए। इनके यहाँ बहुत बुरे हाल है, वहाँ इनकी जमीने हैं, घर है, सब है, वो छोड़ छाड़ के यहाँ 30 साल से बाहर बैठे हैं सर, इनका कुछ तो भी सोचना चाहिए सर।
अरुण जी ये भी बताइए लगे हाथ कि आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित जो आप कह रहे हैं कि अपने ही देश में होने के बावजूद बेघर हैं, इसकी वजह क्या देखते हैं आप?
ये वहाँ इनका कत्लेआम हो रहा था सर, अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ रहना नहीं चाहते, इसलिए स्थापित हो गए सर ये।
नहीं, इतने सालों के बाद भी यदि उनको अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन दोबारा नहीं मिल पाई, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या आपको लगता है?
इनके मन में डर ही था, वो मौत का डर और क्या है, जान का खतरा।
महाराष्ट्र से हमारे पहले श्रोता अरुण के बाद एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हेलो।
हाँ हेलो
जी, अपना नाम बताइए।
हाँ नमस्कार सर, सर मेरा नाम नौशाद अहमद है, मैं उत्तराखंड से हूँ, चमोली जनपद से।
बहुत स्वागत है नौशाद जी आपका।
धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हेलो
जी जी, सब सुन रहे हैं आपको।
हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि 4 जनवरी 1990 से लेके और 2019 तक अभी तक सरकार के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं सर। आपने जो खिलाफ किया था कि पुरखू कैंप के बारे में आपने वहाँ की जो हालत बताई थी, और बड़ी खुशी की बात है कि सर बीबीसी जो है हर कार्यक्रम को निष्पक्ष तरीके से पेश करता है। मेरा ये मानना है सर कि सरकार को इनको 4 जनवरी 1990 से पूर्व की भांति ही सारी सुविधाएं गारंटी के साथ मुहैया करवानी चाहिए, जिससे जो कश्मीरी पंडित हैं उनके मन में पूर्व की भावना पैदा हो और वो अपने जहां उनका स्थान है, जो उनका निश्चित स्थान था, जो उनका घर था, वहां सरकार उनको सारी सुविधाएं प्रदान करवाए। क्योंकि इसके लिए जो दिसंबर 1990 में पनून कश्मीर जो है एक संगठन तैयार किया था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनके द्वारा भी कोई उचित कार्य नहीं किया गया या सरकार को ये मना नहीं पाए। तो मेरा ये मानना है सर कि जल्द से जल्द सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिल जाए। जहां जहां भी कश्मीरी हैं, कुछ पंडित हैं, उनको जो है एक लिस्ट तैयार करके सरकार को उजागर करना चाहिए कि ये लोग वहां वापस जाना चाहते हैं, और इस सबके सामने होने चाहिए सर, यही मानना सर।
बहुत शुक्रिया नौशाद भाई अपनी बात रखने के लिए। राहुल पंडिता, आप सुन रहे थे हमारे श्रोता जो कह रहे हैं, और एक उन्होंने सवाल भी उठाया है, वो सवाल ये कि क्या वजह है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को जान माल की गारंटी नहीं दे पाई है, इस बात का एहसास नहीं करा पाई है कि वो यदि वापसी करते हैं तो महफूज रहेंगे।
सबसे पहले मैं नौशाद साहब और अरुण जी दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इन्होंने जो कश्मीरी पंडित त्रासदी के बारे में जो जानकारी रखी वो एकदम सटीक है। देखिए, हुआ ये कि 1990 से के बाद से ही इस मुद्दे का काफी इस्तेमाल हुआ, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दो चीजों पर बात करके वो अपने आप को एक नेशनल पार्टी में तब्दील करने में कामयाब हो पाई है। एक कश्मीर का मुद्दा है और एक अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा है। आपको याद होगा उस जमाने में जनवरी 1992 में एक यात्रा भी हुई थी, एकता यात्रा भी हुई थी, जिसमें करीब 50,000 लोग उस वक्त के जो शीर्ष बीजेपी के नेता थे मुरली मनोहर जोशी जी, और उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर अभी के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ये लोग करीब 50,000 लोगों को गए थे, लेकर गए थे श्रीनगर। लेकिन सुरक्षा कारणों से करीब 70 लोगों को अनुमति दी गई कि वो लाल चौक में श्रीनगर शहर के बीचों बीच तिरंगा झंडा फहराए। तो उस वक्त ये नारा लगा था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन उसके बाद नारों से ये बात कुछ आगे बढ़ नहीं पाई है। तो अभी आपने देखा अनुच्छेद 370 भी हटा, लेकिन अभी जो तीन चीजें बड़ी कश्मीरी पंडितों के पास, वो ये है कि सबसे पहली बात जो है कि ये जो 700 हत्याओं के मैंने बारे में बात की, इसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। जो आतंकवादी है, जेकेएलएफ के आतंकवादी फारूक अहमद डार, बिट्टा कराटे, जिन्होंने नेशनल टेलीविजन से 90 में ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कम से कम 20 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, लेकिन इसमें कोई सुनवाई किसी भी सरकार की तरफ से नहीं हुई। सबसे पहले बड़ा मुद्दा हमारा ये। दूसरा, हमारे जो जीने का तरीका था, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, जो करीब 500 के आसपास मंदिर थे, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में सारे तबाह हो गए, टूट फूट गए। उन पर आतंकियों ने हमला किया, कुछ लूम्पन एलिमेंट्स वहां थे, उन्होंने
राहुल पंडिता, मैं आपको यहां रोक रहा हूं, टोक रहा हूं, और ये जो मंदिर वाला अभी आपने जिक्र किया, इसी को लगे हाथ चर्चा कर लेते हैं। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है किशन रेड्डी। बीते दिनों उनका एक बयान आया कि लगभग 50,000 मंदिर हैं कश्मीर घाटी में, लगभग 50,000 जो बंद हैं, जिन्हें दोबारा खोला जाएगा। क्या वाकई घाटी में 50,000 मंदिर बंद पड़े हैं जिन्हें दोबारा खोलने की जरूरत है?
देखिए, ये बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर है। जैसे कि मैंने कहा, कश्मीर घाटी में करीब 500-600 मंदिर हैं, और उनमें जो बड़े मंदिरों को छोड़ते हैं, जिसमें सुरक्षा की पूरी तैयारी है, उसमें सुरक्षा बल तैनात है, वो बच पाए हैं। लेकिन घाटी के चप्पे चप्पे पर जो एंशियंट कल्चरल हेरिटेज है हिंदूज का, इसमें मैं एक याद दिलाऊंगा, एक साउथ कश्मीर में एक मूर्ति थी जो 90 में चोरी हुई, वो अमेरिका के रास्ते जर्मनी के एक म्यूजियम में पहुंची, और जब मोदी जी उस वक्त गए, मेरे ख्याल से 2015 में, तो जर्मनी के चांसलर ने बतौर गिफ्ट उसको तेंगपुरा की दुर्गा कहते हैं, एक मूर्ति है, एक बहुत ही अच्छे धातु से बनी हुई, उसको वापस किया। तो ये हाईली एग्जैजरेटेड फिगर है, और गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये बयान आना अपने आप में ये दर्शाता है कि इस मामले को लेकर ये सरकार सीरियस नहीं है।
राहुल पंडिता, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि नारोज से बात आगे नहीं बढ़ पाई, क्या वजह रही इसकी? क्या क्या मंशा साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है, या मुद्दे को लगातार बना के रखने की नीयत है जिससे मुद्दा चलता रहे और बात अपनी जगह धीरे धीरे चुनाव में जब समय आए तो उसका फ़ायदा या नुकसान जो दूसरी पार्टियों को है वो होता रहे? तो मंशा पे सवाल है या नीयत पे सवाल है?
देखिए, साफ सी बात है कि ये कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है, समुदाय है, ये एक बहुत छोटा समुदाय है। जैसे मैंने कहा, करीब 4 लाख लोग हैं और थोड़े बहुत लोग बाहर की देश से बाहर रहते होंगे, तो मोटा मोटा आप करीब 5 लाख लोग के आसपास समझ लीजिए। आज की तारीख में कश्मीर से पलायन के बाद हम पूरी दुनिया में बिखर चुके हैं। कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ बेंगलोर में रहते हैं, कुछ अमेरिका में रहते हैं, कुछ लंदन में रहते हैं, कुछ जोहान्सबर्ग में रहते हैं। तो हम एक वोट बैंक नहीं है, हमारी एक आवाज नहीं है। तो हमारे मुद्दे का इस्तेमाल तो हुआ, प्रयोग तो हुआ, कई पार्टीज ने किया, लेकिन जब इस पर कार्य करने की बात आई, काम करने की बात आई, तो सारे सब ने हमसे अपना मुंह मोड़ लिया।
राहुल पंडिता, आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में कुछ और श्रोताओं को शामिल करते हैं, फिर आएंगे आपके पास दोबारा। इस समय कार्यक्रम में कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं?
मोहन सिंह, काजला बोल रहा हूँ।
जी मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका।
हाँ, काजला के गाने, जिला राजस्थान से। मेरा मानना ये है सर कि इनका जो 400 आदमी जो मरा था ना पहले इसमें झगड़े में, इनको मतलब निकाला गया था, उन आदमियों को तो सबको मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे मान लो कोई बाढ़ में मुआवजा मिलता है, कोई राज्य में 10 लाख मिलता है, किसी में 4 लाख मिलता है, ऐसा देना चाहिए। दूसरी बात कि इनका जो घर है, जहां मतलब इनको ले जाके ना सुरक्षा के साथ, भाई कहां कहां आपकी जगह थी, वहां पर अगर इनका मकान टूट फूट गए ना तो नए सिरे से बल्कि इनको मकान दिया जाए, और जब तक ये सेट नहीं हो जाए पूरे, तब तक मतलब क्या मोदी जी की तरफ से मतलब इनका खाने पीने का ये प्रबंध मतलब होना चाहिए कम से कम भी 5 साल तक, जब जाके ये सेट मतलब होंगे। और फिर दूसरी बात कि मोदी जी तो इतना कर देगा अपन, लेकिन हिम्मत इनको भी करना पड़ेगा। जैसे वो आजी मस्तान वाली सी बात है, वो जेल से छुट्टा था तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी मतलब लोगों ने हड़प ली थी, तो वो किसी के पास गया था तो उसको ये बताया था कि लाइन खींची थी जमीन पर, बोलो बगैर छुए उसे मतलब इस लाइन को आप छोटी कर दो, तो उसका उत्तर तो आप दोगे मेरे से भी अच्छा। तो ये क्या कि बड़ी उस लाइन को छोटी करनी इन्हीं को पड़ेगी पंडितों को, और इनको हिम्मत करनी पड़ेगी, फरसराम जी वाला सा फरसा चलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता इनके लिए।
झुंझुनू राजस्थान से हमारे श्रोता मोहन अपनी बात कह रहे थे। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते चलें, उसके बाद हम बात करेंगे। जी
हेलो
जी, अपना परिचय दीजिए।
जी सर, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार त्रिपाठी लखनऊ से बोल रहा हूँ। संदीप सोनी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, राहुल पंडिता, दोनों लोगों को आपको हमारा सादर अभिनंदन और सब नमस्कार सर।
बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अब तक जितने भी ऐसे किए, अगर प्रयास किया पिछली बार अपनी बस्तियां बसाने के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए, तो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का सब शिकार हो गया, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा इस्लाम से जुड़ा रहा, जिसको हमेशा पंडितों के बारे में कोई चर्चा आज तक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कम से कम एक नेशनल इशू मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, कम से कम उसके अंदर एक मंशा है, और ऐसा जब तक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा, जब तक टेररिज्म वहां से खत्म नहीं होगा, हमेशा वो थ्रेट रहेगा। इतनी बड़े भाई के साय में कश्मीरी पंडित कैसे वहां का सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को, बड़ी मुश्किल है। जब तक वहां इनकी सेफ्टी नहीं हो पाएगी, तब तक इनको सर्वाइव कराना, जब तक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाएगी गवर्नमेंट, अब धारा 370 हटने के बाद कम से कम एक जब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो उसके बाद में फिर इनको विस्थापित करने के बाद में, जो विस्थापित है आज तक दिल्ली में रह रहे, बेंगलोर में रह रहे हैं, उनको कम से कम एक राहत की सांस मिलेगी, उसके बाद सरकार अपना कुछ एजेंडा प्रस्तुत करेगी।
बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। राहुल पंडिता, आपने सुना हमारे श्रोता कितनी कशिश के साथ अपने मन की बात कह रहे हैं, और इन्होंने अभी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो हालात बने हैं, क्या लगता है आपको उसमें घाटी के मुसलमान और जो कश्मीरी पंडित हैं उनके संबंधों पर सकारात्मक असर होगा या नकारात्मक असर पड़ रहा है इसका?
देखिए मोहन जी और डॉक्टर त्रिपाठी दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इनकी बात एकदम सही है, क्योंकि घाटी में जितने भी कश्मीरी पंडितों के मकान थे उसमें करीब 95% जो है वो उनके पास नहीं है अभी। उसमें से बहुत सारे मकानों पे लोगों का कब्जा हो गया और काफी सारे मकान 90 के दशक में ही औने पौने दामों में बेच दिए गए, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ही बुरी दशा से गुजर रहे थे। इसलिए हमको लगा कि उस वक्त जितना भी हमको अपने मकान का दाम मिल रहा है उससे हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है ये ऑलमोस्ट 100% साक्षर कम्युनिटी है। हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमारे यहाँ जो मंत्र है विद्याम देही सरस्वती, सरस्वती का बहुत महत्व है हमारा। सो बाय वर्च्यू ऑफ आवर एजुकेशन हमने अपने आप को फिर अपने पांव पे खड़ा किया। आज की तारीख में मेजॉरिटी जो कश्मीरी पंडित है अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, इसलिए हमें सरकार से उस तरह का कोई मुआवजा वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन हमें सरकार से ये मदद चाहिए कि जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की स्थिति वहां नहीं है कि हम लौट सके, लेकिन हम काफी वक्त से सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि एक सेपरेट टाउनशिप का गठन किया जाए वहां, जो बहुत ही छोटा एरिया है जिसमें सुरक्षा दी जाए और जो कश्मीरी पंडित वहां वापस जाना चाहते हैं वो वापस जाए। मैं 30 सेकंड और लूंगा, मुझे मालूम है वक्त हमारे पास कम है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि कश्मीरी पंडित समुदाय में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली और अन्य महानगरों में टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, चाहे वो मेदांता हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो फोर्टिस हो, और आईटी सेक्टर में हमारा काफी बोलबाला है और एकेडमिक्स में हमारा काफी बोलबाला है। तो मोदी जी हमेशा एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि श्रीनगर का एक हिस्सा है जहां पर जिसको एक स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाए, जहां पर मेडिकल टूरिज्म लाया जाए। दिल्ली इतना मेडिकल टूरिज्म आता है अफगानिस्तान से, इराक से, अफ्रीकन राज्यों से, कंट्री से, तो वहां पर वो जाए और उस तरह की फैसिलिटी मिले। और दूसरा छोटा सा इसमें ये एक कॉम्पोजिट 100% कश्मीरी पंडित कॉलोनी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे काफी सारे मित्र हैं जो कश्मीरी मुसलमान हैं और वो वहां पर हमारे साथ रहना चाहते हैं, जैसे एक जमाने में वहां रहते थे, तो उनको भी मौका मिले कि वो हमारे साथ रहे और फिर हम कश्मीर को जैसे पहले था 1990 से पहले कमोबेश उस तरह की स्थिति में ले आए।
राहुल पंडिता, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में नेटवर्क अभी एक बड़ी समस्या है अलग अलग वजहों से, इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ कश्मीरी महिलाओं से बात करनी चाही। दोनों महिलाएं, अभी हम आपको उनकी आवाज़ सुनवाते हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं। पहले सुनिए निधि टिक्कू, वो अपने तजुर्बे को किस तरह बयां कर रही हैं।
मैं निधि मित्रा हूँ, निधि टिक्कू मित्रा। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरी शादी जो है वो बंगाली से हुई है और मैं ये जानती हूँ कि जो आर्टिकल 370 से पहले जो हालात थे, जिस दिन मेरी शादी हुई मेरे सारे जो अधिकार थे वो खत्म हो गए, क्योंकि मैंने अपने कश्मीरी समाज से बाहर जाके शादी की। तो जब ये आर्टिकल जब ही खत्म हुआ तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की थी कि आई हैव रीगेन्ड माय राइट्स। आज मेरे राइट्स वही हैं जैसे बाकी और भी महिलाओं के हमारे देश में हैं। मेरा अपनी धरती पे, अपने कल्चर पे, अपनी जमीन पे मेरा अधिकार वापस मुझे दिया गया, तो ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जो हुआ है उस स्टेप को देखते हुए मुझे जरूर लगता है कि मोदी सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि चीजों को पहले से बेटर किया जा सके, नॉर्मलाइज किया जा सके। तो मेरे हिसाब से तो काम हो रहा है, मुझे तो उसमें आशा की किरण जरूर दिखती है। इतने सालों से जो जिस तरह का माहौल रहा है, जो दशा कश्मीरी पंडितों की रही है, वो एक दिन में दो दिन में सॉल्व नहीं हो सकती। आई थिंक जस्टिस जो है यहाँ पे स्टेप्स में ही आ सकता है। और एक जो सबसे जरूरी, जो सबसे पहला स्टेप था वो एब्रोगेशन था, आर्टिकल 370 को खत्म करना। तो ये उन्होंने पहला स्टेप लिया है और इसके बाद धीरे धीरे चीजों को बदलने में उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीजें होंगी जो अलग अलग स्टेप्स में होंगी। कश्मीरी पंडित धीरे धीरे वापस जा सके, धीरे धीरे जो है वहां सेटल हो सके, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी करनी जरूरी है, क्योंकि कश्मीर में कभी भी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था। तो धीरे धीरे चीजों को वापस सेटल करना, उसको जैसे बाकी हमारे देश में जो भी नियम है, कानून है, वो सब वहाँ पे अब धीरे धीरे अप्लाई होंगे, धीरे धीरे वहाँ पे चेंजेस आएंगी। तो धीरे धीरे ही बहुत सारी चीजों को मिला के जो है हम कह सकते हैं कि जस्टिस होगा।
राहुल पंडिता, आपने सुना जैसा कि निधि टिक्कू कह रही थी, धीरे धीरे होगा जो भी होगा। क्या कहेंगे आप, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जितनी योजनाओं की बात कही है, जिस तरह के ख्वाब दिखाए हैं, उनमें कश्मीरी पंडितों के लिए उन योजनाओं में कितनी जगह देखते हैं आप?
देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम के शुरुआत में आपने एक क्लिप चलाया जिसमें कुछ कश्मीरी पंडितों को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा वर्ग है जो भावनाओं के आवेग में आकर इसको सेलिब्रेट कर रहा है, मिठाई बांट रहा है या पटाखे चला रहा है या टीवी कैमरास के लिए उसके सामने नाच रहा है। ये बात सही है कि मेजॉरिटी जो कश्मीरी पंडित हैं आर्टिकल अनुच्छेद के हटने का समर्थन करते हैं, लेकिन ये कोई बदले की भावना से नहीं करते हैं। विगत कुछ हफ्तों में टीवी पर और सोशल मीडिया की पोलराइजेशन के चलते इस तरह का एक इंप्रेशन बन रहा है कि कश्मीरी पंडित जो हैं इस बात से बहुत खुश हैं कि घाटी में क्लैंप डाउन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है और वहाँ के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं मुसलमान वो सफर करें। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ आपके श्रोताओं को कि ये आर्टिकल 370 हटाने का जो निश्चय है ये जनसंघ के वक्त से है। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, ये कश्मीरी पंडितों के पलायन से बहुत पुरानी बात है। तो इसको कश्मीरी पंडितों के पलायन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और ना इस बात से जोड़ा जाना चाहिए कि ये किसी बदले की भावना से किया गया है। तो ये मैं अपने श्रोताओं, आपके श्रोताओं को बड़े साफ करना चाहता हूँ। अब आर्टिकल 370 हटा, इसके बाद क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या ये इंडस्ट्रीज होंगी, क्या इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, क्या वहाँ सिनेमा हॉल, कैफेज फिर खुलेंगे, ये अगले कुछ महीनों में स्थिति साफ हो जाएगी।
हमारे साथ एक और जम्मू से एक और कश्मीरी पंडित महिला आवाज़ उनकी हमारे साथ है और वो भी सुनना चाहिए कि वो इस पूरे घटनाक्रम पर कैसे उसको बयां कर रही हैं।
मैं जम्मू से भारती बोल रही हूँ, एक आम नागरिक जो माइग्रेशन का शिकार हो गई है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी जनरेशन जो है ये खराब हो चुकी है, जो हमारे हंसने खेलने के दिन थे वो हम टेंटू में रहने लगे, सांप बिच्छुओं के बीच में। हमारा बचपन खराब हो गया, हमारा जो यूथ था वो खराब हो गया। जब हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे, कहीं कुछ और अच्छा कर सकते थे। मोदी जी जो कर रहे हैं एक सही दिशा उन्होंने पकड़ ली है और अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। थोड़ा सा किया है उन्होंने इस विषय में, जो भी है वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा काम अभी उनको और करना है परमानेंट सेटलमेंट के लिए। रूट से हम अलग हो गए हैं, बहुत पहले से बड़ी बार ऐसे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, हम माइग्रेंट बन गए हैं और कितनी उथल पुथल हमारी लाइव में हो गई है। तो न्याय तभी मिलेगा जब वही उसी इज्जत के साथ और उसी सेटिस्फेक्शन के साथ और वहां पर हम जाएंगे अपने घरों में, जैसे आप रहते हैं अपने घर में, किसी घर के बिना। हमारा अपना है, हमारी कलीग जैसे हैं बाकी जगहों पर जो रह रहे हैं, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, कहीं भी जो अपने घर में रह रहे हैं और डर नहीं है कि कल को पता नहीं क्या हो। अनसर्टिनिटी जो हमारी लाइफ में है, जब से मैंने आँख खोली है तब से अनसर्टिनिटी लगी अभी तक, तो ये अनसर्टिनिटी का माहौल खत्म हो और जैसे आम नागरिक रह रहे हैं इज्जत के साथ, दहशत के बगैर, प्यार के साथ, हमें लगे हम अपने घर में रह रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं रह रहे।
राहुल पंडिता, जैसा कि भारती भट्ट कह रही थी, जम्मू से परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रही थी, स्थायी समाधान की दरकार है, आपकी पैनी नजर रहती है कश्मीर मामलों पर, आप बताइए क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी वापस लौटने की राह पहले के मुकाबले कुछ आसान हो गई है?
देखिए, भारती जी ने जिस डर के माहौल का वर्णन किया वो हम कमोबेश सारे कश्मीरी पंडित उस हादसे से 90 में गुजर चुके हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं कश्मीरी पंडित हैं, वो भी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन है, जिनका कश्मीर घाटी से 90 में पलायन हुआ। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रकरण हुआ जहाँ पर कुछ लोगों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर छोड़ के इसीलिए आए थे कि ताकि हमें ऐसे अतिवाद का सामना ना करना पड़े, और आज हमें भारत की राजधानी के बीचों बीच ऐसे नारे फिर सुनने को मिल रहे हैं। तो उनकी वो याद फिर से ताजा होगी। हमारा मुतालबा ये है कि 370 हट गया, इससे जो एक
डिविजन था कश्मीर और भारत के बीच में, वो खत्म हो गया।
राहुल पंडिता वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। दुनिया भर में हमें सुन रहे श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया और माफी चाहेंगे उन श्रोताओं से जिन्हें हम चाहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। दिन भर और इंडिया बोल में आज इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया रेहान फजल ने और तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलकराज भाटिया। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार सुबह 6:30 बजे।